जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री बरसानो धाम। जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय श्री बरसानो धाम। जय जय श्री बरसानो धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय श्री बरसानो धाम। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अभिराम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु को इन्फॉर्म करना है कि हमारी कथा यहां पर है। जय जय श्री राधे। श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तप्त कांचन गौरांगी। थोड़ा अच्छी तरह से बोलिए। तप्त कांचन गौरांगी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांता। राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे गुरुदेव और उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी और हमारे सभी आचार्यगण, सभी वैष्णवगण, इनकी असीम कृपा से हम अभी श्री बरसाना धाम आए हैं। बरसाना धाम में कोई भी गाड़ी से, ट्रेन से प्लानिंग करके, कमरा बुक करके नहीं आ सकते। यहाँ पर राधा रानी के कृपा से ही हम आ सकते हैं। ये बड़ा दिव्य धाम है। जैसे अपना घर होता है ना, तो उसमें आंगन होता है, पार्किंग लॉट होता है, फिर एंट्री करते तो हॉल होता है, ड्राइंग रूम होता है, उसका और एक ड्राइंग रूम होता है, फिर एक फ्रीज जगह होती है, फिर डाइनिंग रूम होता है, फिर उसके यहाँ किचन होता है, फिर होता है अंतःपुर। अंतःपुर यानी प्राइवेट एरिया, जहाँ पर घर के मालिक सोते हैं, आराम करते हैं, शयन करते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को प्रवेश नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को दरवाजे से ही विदा कर देते हैं, दूध वाला, धोबी, कचरे वाला, उधर से ही। कुछ कुछ ऑफिशियल काम करने के लिए आते हैं, साइन लेने के लिए, प्रभु जी साइन नहीं करना रहा ट्रस्ट पेपर पे, तो वो लोग ड्राइंग रूम पे तक पहुँचते हैं। कुछ नेबर वगैरह फ्रेंड्स आ जाते तो थोड़ा सा इधर उधर डाइनिंग तक पहुँच सकते हैं, कोई वो विशेष होगा तो ही वो बेडरूम तक जा सकता है। सो अंत कक्ष में सबको निमंत्रण नहीं होता है। उस तरह से पूरा जो ब्रज भूमि है 84 कोस का, 168 स्क्वायर माइल्स, 235 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये जो ब्रज भूमि है वो तो सीमित नहीं है, लेकिन एक टेक्निकली उसका अंडरस्टैंडिंग इतना है। तो उसके आगे उपब्रज भी है, जैसे हाथरस, आगरा, पलवल, ये सब उपब्रज है। दिल्ली को भी उपब्रज कहा गया है। तो एनीवेज, तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग जगह हैं। कुछ जगह भगवान का उच्चारण करते हैं, कुछ जगह नौका विहार करते हैं, कुछ जगह सबके लिए ओपन है, कुछ जगह क्लोज्ड हैं। ऐसे बरसाना जो है ब्रज भूमि का अंतःपुर है। राधा कुंड, श्याम कुंड भी ब्रज भूमि का अंतःपुर है। वहाँ पर सभी लोगों को प्रवेश नहीं है। शरीर से तो गधा भी जाएगा वहाँ पर, लेकिन आत्मा से सभी लोगों को प्रवेश नहीं होता है वहाँ पर। इसलिए हम लोगों को अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से क्यों ना हो, शरीर से क्यों ना हो, हमको राधा रानी ने यहाँ प्रवेश तो दिया है, यहाँ की हवा में, यहाँ के वृक्ष के नीचे, यहाँ की रज में आप बैठे हुए हैं। जिसमें आप बैठे ना, आपको लगा होगा क्या व्यवस्था है यात्रा की, बैठने की भी जगह नहीं है, मिट्टी में बिठा रहे हैं। यहाँ पर आपको जानबूझकर मिट्टी में बिठाया जा रहा है। तो ये जो रज है जिसमें आप बैठे हैं, हो सकता है अभी तक लाखों कण आपको रज के स्पर्श कर चुके होंगे। इस हर एक रज के कण में राधा रानी के चरणों का स्पर्श है। श्री कृष्ण के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पूरे देवता लोक से देवता, देव ऋषि सब लोग आ जाते हैं, और वो श्री कृष्ण जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए सारे आते हैं, वो श्री कृष्ण स्वयं यहां पर राधा रानी के रज लेने के लिए खुद आते हैं। जिनके रज में सारे लोग लोटपोट होते हैं, वो स्वयं यहाँ पर, यहाँ के रज में लोटपोट हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर क्या कहते हैं, ही इज रोलिंग इन द डस्ट ऑफ बरसाना धाम। केवल इस रज को माथे पे नहीं लगाते हैं, उसमें दंडवत प्रणाम करते हैं। केवल दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं तो रोल हो जाते हैं, उसको कहते हैं लोटपोट हो जाना। और केवल लोटपोट नहीं होते हैं, इसमें अश्रु भी बहाते हैं, याचना के अश्रु बहाते हैं, और उस अश्रु और रज के मिश्रण में भी लोटपोट हो जाते हैं। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसे भूमि में हम लोग आए हैं, यहाँ पर साधारण भूमि नहीं है। हमारे गौर किशोर बाबा महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु जी थे, प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु जी थे, करेक्ट, वो कहते थे कि पूरे वैकुंठ के साम्राज्य से भी यहाँ का ये रज का कण खरीद नहीं सकते हैं। वो वृंदावन की बात हो गई, तो बरसाने के क्या कहेंगे आप। ऐसे रज की महिमा है। इस रज के कण में राधा और कृष्ण के प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है, तो किसी भी कीमत पर हम खरीद नहीं सकते हैं बिना कृपा के। कृपा ही है उसका एक मूल्य है, और कृपा कभी भी हम छीन नहीं सकते किससे। हे कृपा करो मुझ पर, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, आई एम टेलिंग यू गिरिराज प्रभु प्लीज मर्सीफुल टू मी, ऐसा नहीं होता है। कृपा तो हृदय से होती है ना, और कृपा कब होती है हृदय से, जब वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, तो उसकी प्रसन्नता में ही इसकी कृपा छुपी हुई है। तो राधा रानी कब प्रसन्न होगी, जब राधा रानी के भक्तों की हम सेवा करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा PhD, हमारा वेल्थ, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट, हमारा अधिकार, हमारा पावर, नॉलेज, हाँ जो भी हमने इकट्ठा किया है, उससे ये प्रसन्नता नहीं हो सकती है। उल्टा कभी कभी उसके कारण गर्व होकर हम गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ है ये। क्योंकि कोई भी ऐसा एक ऑपुलेंस आ गया ना हमारे पास, ऐश्वर्य, तो गर्व सबसे पहले साथ में आता है, उसके हाथ पकड़ के आता है उसके, तो वो जो ऑपुलेंस है उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए संतों का सहारा होना चाहिए कि हमारे सारे ऐश्वर्यों को, सारे प्राप्तियों को, सारे क्वालिफिकेशंस को, धन को, अधिकार को, कैसे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया जाए, इसका जो कला है, आर्ट है, ये संतों के संग में हम सीख सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि राधा रानी को प्रसन्न करना है तो केवल राधा रानी के भक्तों की सेवा करनी है। और राधा रानी के भक्त कौन है? जो जो राधा रानी और कृष्ण का महामंत्र जपते हैं वो सब उनके भक्त हैं। उसके आगे जो यहाँ रहते हैं वो उनके विशेष भक्त हैं, जो यहाँ पर जन्म लिए हुए और विशेष भक्त हैं, कुछ लोग बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं वो भी बहुत प्रिय हैं राधा रानी को, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई रह नहीं सकता है, उनकी मर्ज़ी के बिना यह कोई जन्म नहीं ले सकता है, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, और उनकी कृपा के बिना यहाँ पर सेवा भी नहीं कर सकता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, पवित्र हो जाता है साधना करने से, सेवा करने से, हृदय में सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उस पवित्र स्थिति में ही यहाँ की सेवा जो है वो बढ़िया से कर सकते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हम जहाँ कहीं भी रहे, जरूरी नहीं कि यहीं आके रहे और यहीं आकर ही सेवा करें, जहाँ कहीं भी रहे वहाँ रह के भी राधा रानी के और उनके भक्तों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि सेवा कोई जगह पर सीमित नहीं होती है कि यहीं पर कर सकते हैं, वहीं पर कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं देयर इज नो मटीरियल इम्पेडिमेंट इन डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति में, राधा रानी की सेवा में कोई भौतिक बाधा नहीं है, देयर इज नो इम्पेडिमेंट, कोई लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। उसके परे जाकर आप जहां पर भी हो, आत्मा से, तन से, मन से राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बरसाना धाम का महात्म्य ऐसा है कि श्री कृष्ण को रसराज कहते हैं, सारे रसों के राजा हैं, लेकिन रस की प्राप्ति राधा रानी से करते हैं। रस की प्राप्ति राधा, रस की निर्मिति राधा रानी से होती है, फिर राधा रानी से कृष्ण को प्राप्त होता है रस, और रस का विकास कृष्ण करते हैं, और फिर वो रसराज बन जाते हैं। जो भी भक्ति भक्ति हम कहते हैं ना, वो उसका उगम राधा रानी से होता है। क्यों आवाज आ रही है खट खट खट? राधा रानी भक्ति देवी के नाम से जानी जाती है, भक्ति की शुरुआत, भक्ति का उगम उनसे होता है, और फिर पूरे विश्व को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भी उनको वो उनसे भक्ति का बीज लेते हैं, क्योंकि वो भी उनके भक्त हैं। परम भगवान गोलोकेश्वर परात्पर भगवान परमात्मा जो हैं वो राधा रानी के भक्त हैं, और हम भी राधा रानी के भक्त बनना चाहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनका नाम था, तो उनके पास आके थे कोई भक्त लोग, कहते थे हम कृष्ण के भक्त हैं, तो उनको थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत अच्छा, थैंक यू करके भेज देते थे। अगर कोई आके बोलेंगे कि हम भक्तों के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, तो उनके पास बहुत समय बिताते थे, क्योंकि हमको कृष्ण भक्त होने की जो पदवी है ना, कृष्ण भक्त, ये बहुत बड़ी बड़ी पदवी है। हमको तो केवल, हमारा एस्पिरेशन क्या है, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास, हमको भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास बनना है। उसको सबसे पहले राधा रानी और कृष्ण भगवान देखते हैं, जो सबसे नम्र होकर दासों के दासों का दास बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूल बिनने की सेवा है तो किसी को कहा है कि लाल फूल बिनो, येलो फूल बिनो, गुलाबी फूल बिनो, तो बिन रहे हो। फिर वो किसी को दे जाते हैं, फिर वो उसकी माला बनाते हैं, फिर और किसी को दे जाते हैं, फिर कोई तीसरा ही पुजारी उसको भगवान पुर चढ़ाएगा। लेकिन जो फूल बिन रहा है वो कंपटीशन नहीं करेगा कि प्रभु जी हमने फूल बिने हैं, अभी आप खाली रेडीमेड माला को पहना रहे हो, हमको भी मौका दो भगवान को फूल चढ़ाने का। नहीं, वो सेवक क्या बोलेगा, जो भी है कोई भी चढ़ाएगा, हमारे फूल तो हमने बिने, वो भगवान के शरीर पर चढ़ रहे हैं। यही भाव होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या करने को मिला, मैं कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं हूँ, मैं मैनेजर क्यों नहीं हूँ, मैं चीफ क्यों नहीं हूँ, मैं बस लीडर क्यों नहीं हूँ, मैं ये क्यों नहीं हूँ। वो सभी करना है लेकिन सेवा भाव से करना है, भक्तों की सेवा भाव से करना है। वो जो सेवा भाव है ना, यहाँ का एंट्री पासवर्ड है। वो होगा तो आपको आत्मा से यहाँ से प्रवेश मिलेगा, आपको दिव्य अनुभव आएंगे। देखिए, सब लोग यहाँ पर आए हैं लेकिन हर एक को यहाँ का अनुभव अलग 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 होगा। एक ही धाम में आए, एक ही हवा में बैठे हैं, एक ही जगह बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक ही राधा रानी का मंदिर का दर्शन करेंगे, सब एक सब कुछ सबको मिलेगा एक समान, लेकिन सब ग्रहण करेंगे अलग अलग, क्योंकि हर एक का कप डिफरेंट साइज का है। कोई 100 ml का है, 200 का है, कोई 500 ml का है, 1 liter का है, कोई 5 liter का है, कोई 50 liter का है। वो बताया ना मैंने आपको, याद है ना आपको, हमेशा याद रखना कमल कितना खिला हुआ है उतनी रोशनी अंदर आएगी, कमल कितना बंद है उतना रोशनी अंदर कम आएगी। तो ये धाम का और एक स्वभाव भी है, वो आपके कमल को अधिक खिलने के लिए भी व्यवस्था बना देता है। धाम का ये महत्व है और ये धाम की बड़ी महिमा है कि धाम हमारे चेतना को विकास करने का मौका देता है, क्योंकि धाम और भगवान एक तरह से अभिन्न है और एक तरह से भिन्न भी है। धाम और भगवान सेम है लेकिन एक अंतर है उसके अंदर। धाम भगवान से ज़्यादा दयालु है। भगवान का नाम और भगवान सेम है लेकिन भगवान का नाम भगवान से अधिक करुणा वाला है, भगवान की लीला भगवान से भी अधिक करुणा वाली है। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीज़ें भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान से अधिक करुणा वाले हैं, मोर मर्सीफुल एंड मोर कंपैशनेट। तो वो कंपैशन में ज़्यादा में क्या करते, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारी चेतना का विकास करते हैं, चेतना को एक्सपैंड करते हैं, फिर उसमें भगवान के बस जाने की सुविधा हो जाती है। तो वी हैव कम हियर टू एक्सपांड अवर कॉन्शियसनेस। दिव्य रूप से हमारी चेतना को विकसित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ना बटोरना है केवल, अरे वो थैली बहुत छोटा लिया तो बड़ा थैली लेना चाहिए, ऐसे बड़ी थैली लेकर बटोरना चाहिए, वो सारा संभाल के रखना है, उसको परवरिश करनी है, कल्टिवेट करना है जो आपने यहाँ पर बटोरा है। बाकी तो रस्ते में सिंगड़ा भी मिलेगा आपको, गन्ने का रस भी मिलेगा, सब मिलेगा, केला मिलेगा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, कुछ बाप नहीं है। लेकिन ध्यान जो है ना वो राधा रानी पर होना चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि स्टेशन पर उतरने के क्षण से, एयरपोर्ट में उतरने के क्षण से वापस ट्रेन और एयरपोर्ट की जगह पर पहुँचने तक और घर जाने तक हृदय के अंदर राधा रानी की कृपा याचना करनी चाहिए। तो लोग, बहुत लोगों मुझे पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि भी कैसे सिंपल बनाया जाए उसको। तो एक लाइन हमने ऐसा सोचा कि ये बहुत इजी है, आप जब चाहे बोल सकते हो। क्या लाइन है वो, बोलो, राधे,
राधे
किशोरी दया करो,
बस
दो चार मंत्र हरे कृष्णा किया, राधे किशोरी दया करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे, राधे किशोरी दया करो, माला पूरी हो गई, राधे किशोरी दया करो, चल रहे रास्ते में, बस में बैठ रहे, उतर रहे, राधे किशोरी दया करो, ऐसे प्रैक्टिस करो। तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा ना कि राधा रानी को आपकी ओर देखना ही पड़ेगा, अरे तो निरंतर मुझे पुकार रहा है, दया करो दया करो दया करो, कभी तो करना ही पड़ेगी दया, मुझे इतनी बार पुकार चुका है ना, दरवाजे पे दस्तखत दिया, एक दो बार दी, दो बार दिया, 50 बार दिया तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा ना उनको। उस तरह से अभ्यास बना दो, कुछ लग गया ना खुट कर गए तो राधे किशोरी दया करो, कुछ ऐसा चमटा लग गया, कुछ ठेच लग गई, वहां भी गिर गए ना अभी, राधे किशोरी दया करो, तुरंत राधे राधे ऐसे बोलते रहो। प्रभुपा जी भी कहते थे प्रसाद लेते समय एक घास खाने का हरि बोल, दूसरा खाया हरि बोल हरि बोल, ऐसे कुछ भक्त थे प्रभुपाद के समय, तो पूरा प्रसाद का समय पे हरि बोल करते ही खाते थे उसको, हर ग्रास पे हर कौर पे भगवान नाम। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और वो अभ्यास करने के लिए हम सब कुछ छोड़ के फुल टाइम यहाँ पर आए, कोई ड्यूटी पर जा रहा है क्या यहाँ पर? सब ड्यूटी वूटी सब छोड़ के छुट्टी वुट्टी करके सब कार्य सेट करके आप यहाँ पर आए हो ताकि फुल टाइम आप एक चीज का अभ्यास कर सकें, जो बम्बई में अहमदाबाद में सूरत में इंग्लैंड में इधर सब जगह पर फुल टाइम नहीं हो सकता है क्योंकि बाकी भी काम होते हैं कर्तव्य होते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ के धाम में आना चाहिए भगवान के चरणों में आश्रय लेने के लिए और ये अभ्यास करने के लिए कि इधर जो फुल टाइम प्रैक्टिस हो रही है वो उधर भी बीच बीच में खाना बनाते समय राधे राधे, कपड़ा धोते समय राधे राधे, सुखाने समय राधे राधे, हरे कृष्णा हो सकता है। और कोई जगह का बंधन नहीं होता है, केवल इच्छा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मनुष्यों को इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, निश्चय शक्ति दी है भगवान ने और किसी भी योनि को नहीं दिए। उसका प्रयोग करके हमको ये निश्चय करना है। कुछ बाधा आ रही है, किसी को चाय नहीं छूट रही है, किसी को कुछ नहीं छूट रहा है, निश्चय करो, प्रार्थना करो, कृपा मांगो, सब हो जाएगा। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर परम भगवान जिनकी हम कृपा चाहते हैं वो भी कृपा लेने के लिए आते हैं। अपने जीवन का जो है ना क्या कहते हैं उसको फाउंडेशन बुनियाद राधा रानी को मानते हैं भगवान, राधा बिना कृष्ण आधा ऐसे भी यहाँ पर कहते हैं। राधा रानी के बिना कृष्ण को पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता है, पूर्णत्व जो है राधा रानी के कारण ही कृष्ण को प्राप्त होता है। यहाँ पर तो कहते हैं लोग कि कृष्ण के साथ राधा रानी खड़ी है तभी कृष्ण अच्छे दिखते हैं, अलग हो गए तो निस्तेज दिखते हैं। दो कारण है उसके, एक कारण यह है कि राधा रानी गई अभी मेरे साथ नहीं है इस भावना से निस्तेज हो जाते हैं, और एक राधा रानी का तेज उनको नहीं प्राप्त होता है इसलिए वो निस्तेज होते हैं। यहाँ का जो गौर तेज है, गौर तेज यानी राधा रानी का जो स्वर्ण गौर तेज है वो इतना प्रभावी होता है कि वो नंदगांव को भी व्याप्त कर लेता है, ताकि नंदगांव में उनको छोड़कर जब कभी कभी रहना पड़ता है रात को वहां पर तो बड़े व्याकुल और निस्तेज रहते हैं, थोड़ा उनको सांत्वना देते हैं वो। सब जगह राधा रानी का तेज फैला हुआ है और कृष्ण उसी के अपने आप को क्या है ना निम्न मानते हैं, सबॉर्डिनेट मानते हैं अपने आप को। तो इसलिए बस प्रार्थना करते रहो, सब उसी में समाया हुआ है। हर चीज जो आपको वांछित है, जो आपको चाहिए, जो आपको जरूरत है, आवश्यकता है उसकी, वो सब चीज राधा रानी को प्रार्थना करके प्राप्त हो सकती है। राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा रानी का एक नाम है लाडली, यानी बहुत प्रिय प्यारी। तो लाडली जी, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। सब दुनिया की ठोकर खाने वाले ठोकर खा चुके हैं, हाँ पीट चुके हैं माया के द्वारा और किसी कर्मों के फलों के द्वारा, वो सबको राधा रानी स्वीकार करती है। कृष्ण कैसे हैं? अनन्यश्चिन्तयन्तु माम योजनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। उन्होंने वादा किया है मैं देखूंगा आपको, कब देखूंगा? अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, जब मेरे अनन्य भक्ति करेंगे, अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं केवल मैं 100%, तब मैं आपका क्षेम कुशल देखूंगा। तो वो दूर की मंजिल है, वो वहां तक पहुंचने के बीच में क्या करेंगे? तड़पते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, लेकिन उनका कंडीशन है, वो स्वतंत्र हैं, अभिज्ञ स्वराट हैं, वो क्या करें। लेकिन राधा रानी कैसी है? आप कैसे भी हो, अगर आपके मन में प्रामाणिकता है, नम्रता है, सिंसेरिटी है और बाकी सारे दोष भरे हुए हैं, राधा रानी आपको स्वीकार करेगी। अपने ललिता विशाखा सखियों को बोल के रखा है उन्होंने, सब लोगों को ऐसे पकड़ के लेके आओ और अपने आज सहारा दे दो, अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दो उनको, और ट्रेनिंग देके मेरे पास लेके आओ जैसे भी हो, फिर मैं उनको कृष्ण को अर्पण करूंगी। राधा रानी कैसे खड़ी हमारे मंदिर में ऐसे, उनके हाथ में क्या है, आप और हम, बड़ी दयालु है वो, जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं, वो उनके हाथ में आ जाते हैं, ऐसा है। बहुत एक कठिन कठिन से कठिन जो बात है ना, वो राधा रानी की कृपा से बड़ी आसान हो जाती है। वैसे हम लोगों को, मुझे तो हमेशा लगता है कि एकदम होपलेस कंडीशन है कि क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से राधा रानी प्रसन्न हो जाए, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उनकी कृपा ही ऐसी है कि वो आसान हो सकता है। कृष्ण को प्रसन्न करना तो बहुत मुश्किल है। वो मोर भी गया था नंदगांव में, पुकारते पुकारते पुकार पुकार के थक रो रो के थक गया बेचारा, वो नो रिस्पॉन्स, तो वो बरसाने में आया। कुछ क्योंकि ब्रजवासियों ने वहां पर कहा, क्यों रो रहे हो बेटा तुम, बोले राधा रानी को कृष्ण को पुकारा, सहस्त्र नाम लिया पूरा कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ठीक, कोई बात नहीं, निराश मत हो जाओ, बरसाने चले, राधा रानी को पुकारो। राधा रानी को पुकारा, तुरंत राधा रानी आ गई। मुड़ को पूछा क्यों रो रहे हो, बोले मैं नंदगांव गया था, बहुत पुकारा, बहुत रोया, कुछ नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, डोंट वरी, इतने प्रेम से पुकार रहे हो, अश्रु बहा रहे हो, दोबारा जाओ। अभी नंदगांव में जाकर ना कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल मत पुकारना, वहां जाके राधे पुकारना। क्या पुकारना, इतना स्लोली पुकारने का तो कोई सुनाई कैसे पड़ेगा। जय जय श्री राधे। एक कारण ये भी था इस राधे कहने का, क्योंकि हमारी एक मंडली आ रही है वहां से, उनका स्वागत कर रहे हैं हम तो वो वापस बरसाने से नंदगांव चला गया, और वहां से उसने जाके राधे पुकारा। क्या कहें, रा से धे तक नहीं पहुंचा तो कृष्ण भाग के आए, धे तो अभी आना है, धे के पहले ही आ गए, भाग के आ गए। कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है, तो मोर को देखा तो तुरंत गोद में लिया उसको, उसको प्रेम से दुलारा। मोर तो ऐसा थर्रा गया पूरा, ट्रेम्बलिंग नेक्स्ट सी यू नो, पूरा थर 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 हुआ था उसका, कांप रहा था वो, कंप हो रहा था उसके शरीर में। तो उस कंप में, उस भाव में, उस प्रेम में उसके कुछ मोर पंख झड़ गए। कृष्ण ने उसको उठाए, अपने सर पर धारण किया। एक कारण है उसका, वो मोर पंख क्यों धारण करते हैं। तो ये मैंने कहानी इसलिए बताया कि कृष्ण को पुकार कर उनका ध्यान आकर्षित करना, उनको प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना, ये बहुत एक दो तीन चार मुश्किल 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 बातें हैं सब। लेकिन उनको ही प्रसन्न करना आसान हो जाता है जब उनकी प्रियतमा राधा रानी को हम प्रसन्न करते हैं। लोग भी हमको पूछते हैं, अरे बरसाने में क्यों हॉस्पिटल बना रहे हैं आप, वृंदावन में बनाओ, मथुरा में बनाओ, इतनी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी और फैसिलिटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हमारा कारण यह है कि हम राधा रानी की कृपा चाहते हैं, इसलिए 30 साल लगे। अभी दिख रहा है ना आपको, 30 साल के बाद में हुआ है सब ये, हम अभी युवावस्था में आए थे, अभी बुढ़े होकर आ रहे हैं तभी दिखाई पड़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि आँख बंद होने के पहले पूरा दिखाई पड़े लेकिन राधा रानी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, वो सबकी सुनती है, सबकी सुनने के लिए यहाँ बैठी हुई है। इसलिए आज का दिन कोई भी इधर उधर भटकना नहीं मन से, आज का दिन सब लोग एकाग्र होकर केवल राधा रानी को पुकारो, पुकारते रहो पुकारते रहो पुकारते रहो, थकना नहीं, थकना मना है पुकारने के लिए। और यहाँ वहाँ दिल को मत भटकाओ, राधा रानी के नाम पर अपना मन केंद्रित करो और राधे किशोरी दया करो, बोलो जरूर दया करेगी वो, निश्चित रूप से करेगी। तो यहाँ का इतिहास बहुत रोचक है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मतलब उनके टेन्योर के, उनके जो जब उनका जन्म हुआ भगवान के नाभि से कमल में ब्रह्मा लोक में जब प्रकट हुए, उसके बाद पता चला, ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उनके टेन्योर के पहले सत्ययुग में, क्योंकि सत्ययुग तो कई आएंगे ना, हर एक कल्प के अंत में आएंगे, तो पहले सत्ययुग में अपना काम शुरू करने के पहले ही 60,000 साल तप किया उन्होंने, क्योंकि सत्ययुग का समय कितना है, 17,28,000 साल ये सत्ययुग का कालावधि है, उसमें पहले 60,000 साल उन्होंने तप किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कृष्ण के तप करने के बाद, फिर अपने काम पे लग गए, ड्यूटी पर लग गए, निर्माण का कार्य किया, फिर उस सत्ययुग के एंड में वापस 60,000 साल तप किया। हम लोग कर सकते क्या? बाप रे, 60,000 ईयर तो लाइफ भी नहीं है इधर, 60 ईयर भी जिए तो बहुत हो गया, पेपर में नाम आएगा 60 कंप्लीटेड, षष्ट्यब्दी पूर्ति। तो 120,000 साल तप करने के बाद कृष्ण ने दर्शन दिया उनको। पुरास्य कृतयुगस्य ब्रह्मा प्रार्थतो हरि ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, ऐसा कुछ श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुझ पर, तो ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, तो भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके चरणों की रज चाहते हैं, आपके और गोपियों के चरणों की। तो भगवान कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर चले जाओ, पहले कहा ब्रज में चले जाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज बहुत बड़ा है कहाँ जाएं, तो बोले वृषभानुपुर, यानी राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु है, जहाँ रहते हैं उनका नाम वृषभानुपुर यानी बरसाना, वहाँ चले जाओ। तो ब्रह्मा जी आए और पर्वत बने, ये भी इसका इतिहास है। कल जो बताया था आपको अनसुया माता की कहानी, वो भी एक इतिहास है। तो देखो आप, सृष्टि के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द ब्रह्मांड, पत्थर बनने को तैयार है, क्यों? राधा रानी की कृपा चाहिए उनको, राधा रानी की कृपा के लिए सब कुछ छोड़ देने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कृपा प्राप्त करना यानी स्वयं कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना मतलब सब कुछ प्राप्त करना। आपके पास जो है आज लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं त्याग नहीं कर सकता, तो आपको बाद में लगेगा तो जो छोड़ा तो मैंने वो कुछ भी नहीं था जो प्राप्त कर चुका हूँ। ध्रुव जी कैसे बोले, अरे वो तो मैं ध्रुव लोग ऐसा अटल, क्या कहते हैं उसको, अटल स्थान प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करने के लिए आया था, लेकिन अभी वो अटल स्थान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रूप में मुझे जो हीरा प्राप्त हो गया है उसके सामने मुझे टूटे हुए कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट। अपने आप पता चला उनको, जो उद्देश्य लेकर आए थे वो उद्देश्य उनको तुच्छ लगने लगा, क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट जो लाभ हुआ वो इतना ऑब्वियस, इतना प्रकट था कि उनको लगा कि क्यों मैं आया सब ये बेकार चीज के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, इतना तड़प के क्यों आया मैं। वैसे ही जब आप राधा रानी की कृपा प्राप्त करोगे, कृष्ण को प्राप्त करोगे, तो आपको लगा कि मैंने कोई कीमत नहीं चुकाया है, बहुत छोटी सी कीमत चुकाया है, इसके लिए मैं इतना आसक्त था। आज हमको जो अच्छी लगती है चीज, जिसमें हम बहुत दिल लगा कर बैठे हुए, वो कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं लगेगी आपको आगे जाके, राधा रानी की कृपा के सामने लगेगा कुछ भी नहीं है। और जैसे ये भावना हम अपने हृदय में बनाते ना, तो कृष्ण राधा हमारे साथ नित्य रूप में रहेंगे, दे विल बी ऑलवेज विथ यू वेर एवर यू आर। तो चिंता दुख करने की जरूरत नहीं कि हम ब्रज में नहीं रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, पूना में रहते हैं, जहां भी रहो राधा कृष्ण आपके संग ही रह सकते हैं अगर आप इस भाव को कल्टिवेट करते हो। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर चार मुख वाले पर्वत बने। वो देखो ये जगह जो है ना हमारी, जो इतनी भाग्यशाली जगह है, इस जगह में किसी भी मिलीमीटर पे आप खड़े रहो, आपको जहां मर्जी खड़े रहो, आपको ब्रह्मा जी के चारों शीश दिखाई पड़ेंगे। अभी तो बिल्डिंग बीच में आएगी, उसके आगे जाएंगे तो आपको किसी भी जगह पे, आप वो कोने में जाओ उधर हमारा गेट है, 5 एकड़ जगह है, ये गेट इधर है, मेन रोड है, कहीं भी खड़े रहो आपको चार शीश है ब्रह्मा जी के ना। एक है भानुगढ़, जहाँ पर विश्वानु महाराज ने अपना घर बनाया, राधा रानी, उसके बड़े भाई श्रीदामा, छोटी बहन अनंग मंजरी, सब यहाँ पर निवास किया। वो आज उनका घर जो है वो राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, इसको श्री जी मंदिर कहते हैं, राधा रानी का मंदिर कहते हैं, लाडली लाल मंदिर कहते हैं, वो यहाँ पर है। उसके बाद में दानगढ़ है, यहाँ पर भगवान खुद दान मांगते हैं, दुनिया को दान देने वाले खुद यहाँ पर भिक्षा मांगते हैं, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, वो दानगढ़ है। उसके आगे विलासगढ़ है, वहाँ पर विलास लीलाएं करते हैं। उसके आगे मानगढ़ है, जहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठ जाती है। ये चार ब्रह्मा के शीश हैं, और उनके शीश के ऊपर राधा रानी और गोपी और कृष्ण और गोपियों ने सबने लीला किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी जब लीला होती थी ना, तो ब्रह्मा जी ऐसे 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 दुलाया मान होते थे, यूज टू मेल्ट इन एक्सटेसी, इसलिए उस पर चिन्ह निर्माण होते हैं। जब वो लीला करते हैं तो उनके हथेली के, इसके दुपट्टे के, हर लखोटी के सब चिन्ह बनते क्यों हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उनको भी अपना पत्थर का रूप जो है वो मेंटेन करना मुश्किल है पत्थर लेकिन वो लिक्विड हो रहे हैं, ऐसी लीला यहाँ पर होती है। तो ये लीला जानना जरूरी है। दूसरा, आपके लिए उसका रेफरेंस क्या है कि हम सब लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं? मतलब किस पर चढ़ने वाले हैं? ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ने वाले। ब्रह्मा जी कौन है? वो तो सृष्टि के प्रथम नागरिक है, लेकिन हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य है वो। हमारे नहीं, जितने भी संप्रदाय है सारे संप्रदाय उनमें उनमें एंड होते हैं, उसके बाद कृष्ण है। जैसे कि हमारे पूरे गंतव्य स्थान में सेकंड लाइन सेकंड लास्ट है, जैसे दादर से चर्चगेट जाना है तो मरीन लाइन सेकंड लास्ट स्टॉप है, वो सबको वहीं से गुजरना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य हैं सब संप्रदायों के। जैसे मेरे हमारे गुरु जो हैं उनके ऊपर चलेंगे क्या हम लोग? उनके चरणों के नीचे जाना चाहते हैं हम लोग? तो हमारे गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के 35 लेवल के बाद में ब्रह्मा जी हैं, उनके ऊपर कोई आचार्य नहीं है, स्वयं कृष्ण है स्ट्रेट उनके आगे, तो उन पर कैसे हम चढ़ सकते हैं? लेकिन फिर भी चढ़ने की अनुमति है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऊपर कोई भी एंजॉयमेंट करने को जाना नहीं है आपको। अरे अच्छा, उधर धाम बिहारी के बाजू में पकौड़े भी अच्छे पकौड़े मिलते हैं, बहुत बढ़िया लस्सी भी बनती है, वो भी हमको लेना है, ध्यान रखना भूलना नहीं, कितनी भी भीड़ होगी। इस भाव से ऊपर नहीं जाना है, केवल राधा रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर जाना है, लीला स्थलियों के दर्शन करने जाना है, वो लीला श्रवण करने के लिए जाना है, वहाँ की रज को मत्थे टके लगाने जाना है, दंडवत करने जाना है, नम्र भाव से जाना है, भक्तों को हेल्प करते करते जाना है, मुझे आगे करते नहीं, लोगों को हेल्प करते करते सबको सहायता करते करते नम्र भाव से सेवा भाव से जाना है। और कोई इंद्रिय भोग नहीं करना है, प्यास लगी जल पीजिए और कोई काम मत कीजिए, फोकस राधा रानी पे रखिए, तो आप ब्रह्मा जी के पर्वत पर चढ़ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। शिव जी के पर्वत पर जाएंगे कभी, आगे मौका मिलेगा नंदगांव में, तो वहां पर भी यही स्थिति होनी चाहिए। महादेव है वो, वह ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं, ही वर्शिप सिम। पुत्र होने के बाद भी महादेव के रूप में ब्रह्मा स्वयं उनका पूजन करते हैं। कितनी बार पुराणों में और शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो वर भी यही भाव होना चाहिए, हर कदम पर जब हम चढ़ रहे हैं ये ध्यान होना चाहिए कि हम ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई भी टाइम पास की बातें, बेफजूल की बातें, प्रजल्प की बातें या वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है कि हम ब्रह्मा जी के सर पे चढ़ रहे हैं। आपको अगर सब बदला पता चला गया कि आप नरेंद्र मोदी के सर पे चढ़ रहे हैं तो कितना सतर्क होंगे आप, बाप रे। वो तो एक अच्छे जीव हैं, बहुत आदरणीय हैं, लेकिन एक जीव है वो, पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के भी नहीं भारत के प्रधानमंत्री है वो, तो ब्रह्मा जी कौन है? भक्त है भगवान के, परम भक्त, स्वयंभू, हाँ विष्णु के नाभि से अयोनिज जन्म है उनका, उनकी माता नहीं है, सब तुम्हें माता पिता तुम्हें सब कृष्ण है उनके से, महान जीव है वो। और वो महान जीव इसलिए नहीं है कि वो ब्रह्मा है और उनका पोजीशन इतना पावरफुल है, महान इसलिए कि वो परम भक्त है भगवान के, महाजनों में उनका नाम भी आता है, संप्रदाय भी उनसे आरंभ होते हैं। तो एक बात आपको मैं विनती करता हूँ कि इस बात को ध्यान रखना है, हो सकता है अभी वातावरण अच्छा है, आपका भाव भी अच्छा बनेगा, कुछ समय बाद धूप आएगी, कुछ समय बाद बहुत कष्ट होने लगेगा, तब सारा भाव भाव सब बूढ़ जाएगा इधर उधर से, तभी आपको मेंटेन करना है उसको। अब अच्छे मौसम में सब लोग अच्छी भक्ति कर सकते हैं, हाँ अच्छा है, लेकिन अच्छे समय पर अच्छी भक्ति करने पर ऐसा अभ्यास करना है कि बुरे समय में भी अच्छी भक्ति कर सकते हैं, कष्ट में भी कर सकते हैं, परेशानी में भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं होने की जरूरत है। तो आगे होगा, अभी बहुत कड़ी धूप शुरू हो जाएगी जब तक हम चढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है इस बात का। और ये श्री जी का धाम जो है वो इसको इसमें सबको सहारा मिलता है। आप लोगों को लगता है कि हमने कुछ अपराध किए हैं, कुछ गलतियां की हैं, कुछ हम लोग कम है अपनी साधना में भक्ति में, कुछ आगे बढ़ने का कष्ट हो रहा है हमको, वो सारे निवेदन यहाँ रखना आप राधा रानी के चरणों में, और हृदय से और आत्मा से राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, आश्रय लेना, क्योंकि वो आश्रय विग्रह है। आश्रय विग्रह यानी सबको आश्रय देने की क्षमता उनके अंदर है। कृष्ण विषय विग्रह है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, जिनको जिनको जिन पर प्रेम करना चाहिए वो प्रेम का विषय है, ये राधा रानी आश्रय का विषय, आश्रय का स्थान है, यहाँ तक कि कृष्ण भी उनका आश्रय लेते हैं, राधा रानी के चरणों में ना कई चिन्ह हैं, उस एक बाएं पैर में महल का चिन्ह है। महल का मतलब क्या है? बसेरा यानी स्टे, यानी स्टेइंग प्लेस, आश्रय। हम घर में क्या करते हैं? आश्रय लेते हैं, रहते हैं उधर जाके। तो राधा रानी के चरणों में ही वो चिन्ह है, वो सबका सहारा है, सबका सहारा है, यहाँ तक कि कृष्ण का भी सहारा वही है। तो हमारा भाग्य है कि हमको ये सब गुरुजी के द्वारा पता चला, कम से कम थियोरेटिकली क्यों ना हो पता चला, उन्होंने समझाया सुनाया। नहीं तो सब लोग वृंदावन आते हैं, बिहारी जी करते हैं, थोड़ा बहुत जमुना जी देखते हैं, गिरिराज जी परिक्रमा करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कृपा चाहिए। अभी तो ये भी फेमस हो गया है, बहुत भीड़ यहाँ पर भी होने लगी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और राधा रानी की कृपा तक, चरणों तक पहुँचना, ये बहुत भाग्य की बात है। और 9 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं साल में। अभी तो पहले मैं कथा में 7 करोड़ बोलता था, अभी ये नंबर बढ़ गया, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सब वृद्धि हो रही है। सब जगह धामों में, तीर्थों में भीड़ बढ़ रही है, त्यौहार हो या न हो, हर जगह पर भीड़ बढ़ रही है। वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दीपक अर्पण करते हैं, दान देते हैं, चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही गिने चुने लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, यहाँ की सेवा करने का, जरूरतमंद सेवा करने का, राधा रानी को प्रसन्न करने की सेवा करने का मौका मिलता है। और उनमें से हम लोग भाग्यवान लोग हैं कि हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने हमको यहीं पर सेवा करने का मौका दिया। तो थोड़ा सा मैं राधा रानी के पहले बातें बताऊंगा, बाद में बताऊंगा यहाँ की सेवा का क्या भाव है। तो यहाँ पर 4 पर्वत बताए मैंने आपको, वो दो जहाँ मिलते हैं ना, वो जगह ऐसे पर्वत ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो एक जगह बनती है जिसमें एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही दिशा में चल सकता है, एक व्यक्ति एक समय पर एक ही दिशा में जा सकता है, नो टू वे ट्रैफिक, क्योंकि जगह ही ऐसी है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको कहते हैं सांकरी कोर, सांकरी यानी छोटी सी, नैरो, कोर यानी रास्ता। तो उसका एक एंड बरसाने में, एक एंड उधर इस तरफ नंदगांव की तरफ है, तो वहाँ पर कृष्ण यहाँ से ग्वाल बालों को लेके आते हैं और ऐसा डंडा लेकर, रुको आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप हमारे एरिया से गुजर रहे हो, हम जानते हैं, रोज़ आप मक्खन दही दूध लेकर जा रहे हो और बेचते हो, पैसा बनाते हो, हमारे एरिया से ट्रेस पासिंग करते हो, आज हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है, नहीं ललिता जी, राधा रानी बहुत नम्र है, बहुत भोली वाली है बेचारी, वो ऐसे बीच में इनको वो स्वभाव बहुत मौन सौम्य और कोमल और दयालु ऐसा है, तो वो ऐसे आतंक होता है तभी वो ललिता जी सामने जाती है, शील्ड एकदम, वो वाम वाम स्वभाव की है, यानी कि कठोर स्वभाव की है, तेज कहते हैं यहाँ की भाषा में, बहुत तेज है वो। वो कहते हैं, अरे कैसे तुम्हारी जगह ये, तुम्हारे बाबा जो है ना नंद बाबा, वो किराए का राजदंड लेकर घूम रहे हैं, हमारी राधा रानी के बाबा जो हैं वृषभानु बाबा, वो सब ब्रजमंडल के राजा थे और दोस्ती थी उनकी नंद महाराज के साथ, बड़ा प्रेम है, अभी भी है, वो प्रेम के वश उन्होंने कुछ राजदंड का हिस्सा इनको भी दे दिया, भाई तू भी राजा बन जा, मेरा दोस्त है, नंदगांव का राज कर ले, और तुम किराए का राजकुमार यहाँ पर हमारे एरिया में आकर बोल रहे हो कि हमारी एरिया है, तुम यहाँ अपने एरिया हमारे एरिया में आए हो, तुमको सबको दंड देना चाहिए। बोलते हैं सब ये कुछ मैं जानता नहीं हो, किसने क्या किया पहले, अभी मैं राजकुमार हूँ। इस तरह से उनकी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, और वो नोक झोंक चलती रहती है तो बहुत देर के बाद में वो नोक झोंक में कृष्ण को इंटरेस्ट कम हो जाता है, ले डंडा उठाते हैं और मटका फोड़ देते हैं तुरंत, आतंकवादी इसको कहते हैं, है ना, बात बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको, आतंक करने ज़्यादा इंटरेस्ट है। तभी बातें हो रही है, ऐसा डिस्कशन हो रहा है, गोपियां हावी हो रही है, कृष्ण को परास्त किया जा रहा है, तो उनको लगता है अभी नॉट पॉसिबल टॉलरेट एनी मोर, फोड़ देते हैं। अभी राधा रानी की मटके फोड़ देते, तुरंत मटकी राधा रानी भोसा रोने जैसे हो जाते हैं, अरे मटका मेरा टूट के जमीन पे गिर गया ना, कीमती मक्खन। और ये लोग इतने क्या कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, चैप्टर लोग हैं ना इतने, तुरंत जाकर वो अपने हाथ से खाना शुरू कर देते हैं, हथेली से चाट रहे पूरा, और ब्रह्मा जी वहाँ पिघल रहे हैं सब देख के, तो हथेली के निशान भी वहाँ पैदा हो गए, जहाँ मटका गिर के फूटा ना वहाँ पर भी अभी भी चिकनी जमीन है, मतलब आप खड़े रहेंगे ना तो फिसल सकते हैं, आज ही भी तो वहां पर अनंत लीला होती है, दान लीला। कृष्ण कभी जोर जबरदस्ती, कभी बिनती, समझे ना, साम दाम दंड भेद, जो भी चलेगा वैसे, मक्खन मिलना चाहिए बस, मूड देख के करते हैं। कभी हार जाते हैं तो राजा रानी और गोपियां कृष्ण और ग्वाल बालों को ना बांध देते हैं, उनकी चोटियों को पेड़ पे बांध देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं उनको। फिर कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण और बलराम जी और ग्वाल बाल सब पुकारते हैं, बचाओ बचाओ। तो वहाँ पर एक बार ना गुरुजी ने कथा किया, और वो कथा ऐसा रोक दिया बीच में कि बोल रहे हैं कि सब ग्वाल बाल पुकार रहे हैं, कृष्ण बलराम बचा लो, कृष्ण बलराम बचा लो। ये तो कॉमन है भाई, कोई अरिष्टासुर आया, केशी आया, कोई पुतना है, जो भी आया, सब लोग कृष्ण बलराम कहो, कृष्ण कृष्ण महाभाव बचाओ। तो सब लोग पुकार रहे हैं, उम्मीद क्या है कि हम अरेस्ट हो गए, अभी हमारे सरदार आएंगे, हमको छोड़ देंगे, है ना, रिहा कर देंगे। कुछ देर के बाद में दो आवाजें आई, हे सुबल, हे विशाल, हे अर्जुन बचा लो। अरे बाबा ये किसकी आवाज है, तो कृष्ण बलराम की आवाज है, हम उनको पुकार रहे हैं, वो हमको पुकार रहे हैं, बचाएगा कौन किसको। तो यहाँ पर महाराज ने कथा रोक ली, बोले हम लोग अभी आगे चलते हैं, और नीचे उतार दिया पूरा। हमको प्रश्न पूछा, बताओ यहाँ पर कृष्ण बलराम क्यों पुकार रहे हैं, सब जगह पुकारते ही सारा करते हैं, वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं, तो ये भी वृंदावन धाम के अंदर है, तो यहाँ पर कृष्ण बलराम क्यों पुकार रहे हैं, तो किसको मालूम है वो रहस्य की बात। फिर बहुत सबको पूछ के उत्तर नहीं मिला, तो महाराज ने बताया कि राधा रानी के प्रेम के सामने यहाँ कृष्ण बलराम भी असहाय हो जाते हैं और पुकारने लगते हैं। तो सभी लोगों की आवाज बचाओ बचाओ करके आई, तो फिर ललिता जी वापस आई, बोली एक ही कंडीशन पे आपको छोड़ेंगे, कल तुम्हारा सरदार जो है ना, वो तो अपने आप को होशियार समझता है, उसको गोपी बन के आना है, सर पे मटका लेके, और तुम सारे जितने इतराते हो ना ग्वाल बाल, सबको गोपी बन के आना है, अपने घर से अपनी मैया से बढ़िया मटका भर के दूध दही मक्खन घी सब ले आना है, और हम सब लोग डंडा लेके ग्वाल बाल बनकर आएंगे, हम आपका मटका तोड़ेंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है, अभी क्या करेंगे। हाँ बोल दिया उन्होंने, अगले दिन कृष्ण गोपी बनकर आए, सब लोग सज धज के श्रृंगार करके मटके लेके बरामदे डोल डोल के आए, उधर से बरसाने की ओर राधा रानी सब बाल बाल बन के आए, वही नोक झोंक बहस हुई, फिर राधा रानी ललिता सर उन्होंने मटके फोड़े खाए। तो उसमें जब अरेस्ट किया था ना कृष्ण को, तो वो यहाँ पर कैसे अरेस्ट करते हैं पता है, गोपियाँ दोनों हाथ पीछे ऐसा मोड़ के बांध देते हैं, ऐसा पूरा ट्विस्ट करके, आपके पेशेंट बन जाते फिर वो, ऐसा ट्विस्ट करेंगे तो कुछ लिगामेंट टेयर या कुछ रिस्ट ब्रेक कुछ हो सकता है ना, अब क्या करेंगे, सर्जन पीछे बाजू में बैठा है तो वही याद आता है मुझे, संघ का परिणाम है वो। तो वो ऐसे बांध देते उसको, और क्या करते हैं पता है, तुरंत वो फेटा खींच लेते हैं। फेटा क्या है ना, वो एक आदर का चिन्ह है, किसी का भी फेटा या पटका होता है ना गले में, वो एक सम्मान का चिन्ह है, उसको छीन लेते हैं वो। तो इनका फेटा छीन लिया, पटका छीन लिया, तो लंबा होता है ना बहुत, तो ऐसा खींच के जा रहा है, उसको भी ले जा रहे हैं, तो उसके पीछे वो जमीन पे लगते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी पिघल रहे ना उधर लीला देख के, तो वो फेटे का भी चिन्ह वहां पर निकल जाता है, उधर भी है। एनीवेज वहां पर आपको लेके जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 400 लोग एक समय पर एक दिशा में एक व्यक्ति चलेगा तो एक दिन पूरा सांकरिक ओर की यात्रा हो जाएगी, ओनली सांकरिक ओर। वो सांकरिक ओर जगह जो है ना, वहां पर कृष्ण भगवान रोज आकर उस रास्ते को फूलों से सजाते हैं, ताकि राधा रानी वहां से आएगी, क्योंकि वहां से आगे गैबर बन है, उसकी भी कथा बताऊंगा आपको। तो वहां से पूरा फूलों से, पंखुड़ियों से, पू केसरों से बनाकर वो इतना इतना मोटा रास्ता बनाते हैं गैबर बन तक, ताकि राधा रानी को वो पथरीले रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे होती नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी राधा रानी गोपियाँ कृष्ण चरण रखते हैं ना, वहाँ पर ब्रह्मा जी पूरा एकदम मक्खन जैसा मुलायम हो जाते हैं, नो हार्डनेस इज फेल्ट बाय एनीबडी। और बाद में वो फूलों के नीचे कृष्ण से भगवान स्वयं सो जाते हैं अंधेरे के समय, क्योंकि गैबरमन की लीला रात को होती है ना अंधेरे में, तो आना जाना उसके बाद रात में होता है, तो वहाँ से गुजरते हैं, तो वो अंधेरा होते ही उसके नीचे जाके सो जाते हैं, ऊपर अपने फूल डाल देते हैं, ताकि राधा रानी मुझ पर चले, उनकी चरणों का प्रसाद मुझे प्राप्त हो जाए। राधा रानी हमें चलते चलते आ रही है, अचानक कुछ लगता है पैर में, देखते तो श्याम सुंदर जी लेटे हुए हैं, तो तुरंत उनको उठा कर गले लगाते, अरे क्यों ऐसे कर रहे हो? तो कृष्ण कहते आपके चरणों की कृपा चाहिए थी इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। अपने हाथों से वो गहवर मन को सजाते हैं कृष्ण स्वयं एडवांस में जाकर, फिर जाकर खुद का मेकअप करके फिर दूल्हा बन के आते हैं। यू नो लीला तो करनी है, सज सज के आना है, लेकिन कृष्ण पहले जाकर वहाँ पर पूरा सेटिंग गोपियों के साथ करते हैं, फिर जाते हैं श्रृंगार करके फिर दोनों को ले साथ में लेके आते हैं। तो ये गहवर बन क्या है? ये गहवर बन जो है ये श्री जी के मंदिर से लेकर पूरे चार पर्वतों को क्रॉस करके चिकसोली गांव चित्रा सखी का गांव है वहाँ के एंड तक जो जितना भी वन है उसको गहवर बन कहते हैं। नाम से आप समझ सकते हैं गहवर मतलब क्या, भावनाओं का अतिरेक, एक्सटसी। मराठी में भी गहिवर, तो मनुष्य गहिवरला म्हणजे उसके भाव जागृत हो गए, रोमांच खड़े हो गए, अश्रु बह गए, कंप हो गया, उसको गहिवर कहते हैं। तो ये गहवर बन है। इसकी विशेषता ये कि ये बहुत प्राइवेट और प्राइवेट और अति प्राइवेट एरिया है जहाँ पर अति अति उत्कट अंतरंग लीलाएं भगवान की होती है। और ये गहवर बन का जो निर्माण है वो अपने हाथों से राधा रानी ने किया, यानी अपने हाथों से पेड़ पौधे लता पता सब लगाए वहाँ पर, लता बेली ध्रुम जितने भी है वो सब राधा रानी ने लगाए, उनका सिंचन किया है, उनको बढ़ाया है, उनको मेंटेन किया है, उनको डेकोरेट किया है। बचपन में राधा रानी लता पताओं और बेलियों का विवाह कृष्ण के पेड़ के साथ में गहवर बन में करती थी। कृष्ण पेड़ की ओर से बड़े वृक्ष दूल्हा और लता पता बेली जो है वो दुल्हने और वो राधा रानी गोपियाँ वो मिलकर उनका विवाह करते थे। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं वहाँ पर, वो भी वो निवृत्त निकुंज यानी वहाँ पर केवल राधा और कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर जहाँ बोले कोयल री, प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर। ऐसे लीला है कि कृष्ण वहाँ पर वो सारी व्यवस्था जो है ना वो कमान में है, वहाँ पर कमनीय व्यवस्था है, एवरीथिंग इज लाइक दिस। उसमें से बेलियाँ ऐसे बहते रहती है कॉन्स्टेंटली, रंग बिरंगी बेलियाँ जो सुगंधित फूलों को लेकर ऐसे बहती रहती है, ऑल फ्लोइंग ऑन द ग्राउंड। तो कृष्ण क्या करते हैं, एक हाथ से श्रृंगार किए हुए राधा रानी को लेकर अंदर आते हैं और बाएं हाथ से लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, सब सवारते सवारते रास्ता बनाते बनाते ऐसे गोल 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 करके राधा रानी को अंदर ले जाते हैं और वहां पर अंदर लीला होती है। ऐसा गहवर बन जो है ना बहुत सुंदर स्थान है, जो ये पूरे बरसाने का हृदय है। है चार पर्वत बहुत सारे कुंड, लेकिन सबके सब ये सब गहवर मन के अंदर है और वहां पर भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ये जगह जो है बरसाना और उसके आगे नंदगांव और जावट कोकिलावन, खास करके उसमें से भी बरसाना, इतनी उत्कट जगह है और यहाँ पर ऐसी लीलाएं होती है कि मेरा मन तो कल भी कर रहा था कि क्या एक दिन में जाकर क्या दिखाऊं और क्या सुनाऊं। तो ऐसा विचार मन में आ रहा था कि 3 से 4 दिन की यात्रा केवल बरसाने में ही होनी चाहिए, ओनली इन बरसाना, एक एक जगह जाकर पूरी लीलाओं को सुनना चाहिए बहुत ध्यान से प्रेम से, इधर ही रहना चाहिए, इधर ही एक ही जगह पर, ना बस की ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही जगह रहो प्रसाद पाओ, अलग अलग जगह पर जाओ। आप संकल्प करो राधा रानी को करेंगे एक दिन 3 दिन की शॉर्टकट यात्रा एकदम मस्त, क्योंकि क्या होता है ना कि वो हर टाइम मुझे ना वो संक्षेप 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 करने को बहुत बोर हो जाता है, ये कथा भी शॉर्ट में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा शॉर्ट, सब बताने की इच्छा हो रही है। तो ये लीलाएं इतनी उत्कट है कि उसके बीच में ना राक्षस नहीं आ सकता है। अभी आप मटका तोड़ने का काम चल रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है कि ये किराए का राजदंड लेके घूम रहे हो, बोल रहे नहीं नहीं मेरा ही राजदंड है, ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, उसके बीच में हा 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 कि मैं केशी आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स लाइक रसाभास है ना पूरा इसके अंदर। तो राधा रानी का प्रभाव ऐसा है ना, कृष्ण से तो कंस जो है ना वो उखड़ा हुआ है, तो हर रोज किसी को भेजता है उसको मारने के लिए, मतलब इतनी तो हिम्मत उसके अंदर है, रोज किसी को ओरिएंट करके भेज रहा है। लेकिन राधा रानी का ऐसा प्रभाव है, देखो आप सोचो इसके बारे में, हाँ सब लोग शास्त्र में लिखा है कि भयात कंसात, भय के माध्यम से कंस ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है ना, द्वेष्याद चेद्यः यानी वो शिशुपाल द्वेष के माध्यम से भगवान की, कामाद गोप्यः काम मतलब वैसे भावना से कृष्ण की प्राप्ति की, लेकिन कंस को भयात कहा है कि भय से उन्होंने कृष्ण की, भय से कृष्ण का चिंतन करते करते आखिर कृष्ण की प्राप्ति हो गई। लेकिन वास्तव में रहस्य यह है कि कृष्ण से भी अधिक वो राधा रानी से भयभीत था। इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। समझो आप किसी से भयभीत हो, उस पर हमला करने का साहस करोगे आप? अरे डरे हुए तो कैसे हमला करेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो तो रोज हमला कर रहे हैं। फाइनली खुद भी सामने आया उनके कुछ षड्यंत्र बना के। लेकिन वो कंस जो है वो कृष्ण को मारने के लिए एक दिन स्वयं यहां पर आया था, क्योंकि वो लोग शिफ्ट कर गए ना, यहां से शिफ्ट करके चले गए, कहां से गोकुल से इधर आ गए रहने के लिए। तो जो रोज जाते थे ना मारने के लिए, वो बोले कोई है ही नहीं वहां पर, किसको मारे, वापस गया। फिर कंस को बताया तो उसने सेनापति को भेज दिया। वो ढूंढे ढूंढे गया तो वो नंदगांव में उनको कृष्ण बलराम मिले। तो नंदगांव में एक शांडिल्य मुनि है, उनको एक शाप उन्होंने दिया था राक्षसों को। वो राक्षस लोग है ना, वो उन्होंने वो कृष्ण के जो ग्रैंड फादर है ना परजन्य महाराज, उनको भी डिस्टर्ब किया था। किसने? केशी दिमन ने। उधर एक प्रेम तड़ाक तीर्थ है, क्षुण्ण हरि कुंड कहते उसको, वहां पर परजन्य महाराज तप करते थे। वहां पर केशी ने आके आतंक मचा दिया, तो वो छोड़ के फिर जमुना जी के किनारे गोकुल में चले, तो वहां पर राज्य बसाया उन्होंने। तो शांडिल्य मुनि यहाँ के रेसिडेंट गुरु हैं, तो उन्होंने शाप दे के रखा था कि कोई यहाँ पर आएगा ना पत्थर बन जाएगा। तो लोग बेचारे पहुंच गए वहां पर, और कृष्ण बलराम को ऐसे पकड़ने गए तो उधर पत्थर हो गए, उनको समझ में नहीं क्या हो गया उधर तक। लेकिन संतों का शाप है ना बहुत शक्तिशाली होता है, कभी संतों को अपराध नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना कि इस समय पर क्या बाजी चलाएंगे और क्या हमारा पटक देंगे समझ में नहीं आएगा। तो पत्थर हो गए, तो भी लौट के नहीं आए, तो कंस खुद काले घोड़े पर बैठकर यहां पर आया। वो तो कैसा, अभी भी देखो रस्ते में पहले बरसाने आता है फिर नंदगांव आएगा। उधर एक भानोकर नाम की जगह है, वो बहुत बड़ा कुंड है कृष्णानु महाराज का। वहां पर राधा रानी जो है अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी, पिताजी का कुंड है प्राइवेट। तो कंस वहां पर आया ना, अरे आते ही काले घोड़े पर बैठकर घूर रहा है इधर उधर। काले घोड़े पर बैठा हुआ इतना खूंखार पहलवान, शक्तिशाली दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट कन्या बन गया, बिकेम लेडी। देखो मैं कथा कर रहा हूं, सब देख रहे कि मैं पुरुष हूं बैठा हूं, अचानक मैं स्त्री बन गया, सबको समझ में आएगा अरे प्रभु जी माता जी बन गए तुरंत। अब मुझे भी समझ में आएगा, मैं तो कथा कर रहा हूं लेकिन गड़बड़ हो रहा है बीच में। तो उनको कंस को पता चला कि मैं कन्या बन गया, और सब गोपियों को पहले पता चला उधर कुंड में स्नान करते हुए, तालियां बजाने लगी वहां पर। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो अभी उसका समस्या कैसे हो गया, उसको ना वापस जाना, क्योंकि वापस जाए जहां पर उस जाता है रहता है वहां पर वो चक्रवर्ती सम्राट है, शक्तिशाली पुरुष है, सभी दुनिया भर के राक्षसों को वश में करके रखा है, महान राक्षस अरिष्टासुर त्रिणावर्त ऐसे भयंकर राक्षस, इतनी रोब, इतना रोब है उसका, इशारे पे सब नाचते हैं उसके। तो वहां लौट के जाएगा, बोले महाराज क्या हो गया आपको। तो वहां पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं है, और यहाँ पर अभी सब गोपियां जो है वो ग्वालिनी है, वो गाय का दूध निकालती है, गोबर गोमूत्र में खेलती रहती है, वो अभी ताली पीट के हंस रही है उनको, चक्रवर्ती महाराज हमारे, हम उनको कर चुकाते हैं, वो टैक्स देने वाले राजा देखो कैसे यहाँ पर कन्या हो गए, कंसनी गोपी हो गए वो। तो गोपियों ने कहा, कंसनी गोपी ने भी नहीं कहा उनको, उन्होंने कहा ए मोटल्ली गोपी, मजबूत थे ना वो, ए मोटल्ली गोपी चल आ जा, चल कंडे बना दे तेरा शरीर थोड़ा कम हो जाएगा। अभी वो थोड़ी सी और लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको छोटी बताता हूँ। अरे वो बीच में पता है क्या हो गया, कंस तो कंसनी बनी गया, घोड़ा भी बेचारा घोड़ी बन गया। संग का परिणाम है ना, जिसके संग में रहोगे वैसा ही रंग आएगा, क्या करेगा उसको, संग ढूंढो अच्छा, हमेशा भक्तों के अंदर भी ऐसा संग ढूंढो जो आपका मन हमेशा कृष्ण पर बनाए रखेगा या रखेगी। सबके साथ मत डोलो, जो उधर टिक्की भी देख रहे हैं और लस्सी भी देख रहे हैं, पकोड़े भी देख रहे हैं, थोड़ा सा हरे कृष्णा करके राधे राधे करके दूर रहना, जो राधे राधे हमेशा कर रहे हैं उनके पास रहना। हाँ ये भी थोड़ा सा युक्ति वाला काम है। तो वो घोड़ी बन गई तो वो भी बेचारी परेशान। 6 महीने गोपियों ने तालियां पीट पीट कर हंस हंस कर हास परियास मजाक करते 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 कंस से कंडे लिपवाए। और कंडे लिपा का मतलब क्या होता है, एक तो गोबर गोमूत्र इकट्ठा करना होता है, गौशाला को साफ करना होता है, उसको इकट्ठा करके फिर वो उसको आपने किया है कभी? बहुत अच्छा काम है वो, बहुत सुंदर काम होता है। उसको गोला बना के उसको फर्स्ट क्लास पर्वत पे, पेड़ पे ऐसे सब लगाना होता है। फिर दिन भर उसको सुखाना होता है, फिर रात को शाम को आके इकट्ठा करना होता है टोकरी में डाल के, फिर घर जाके उधर एक एक मस्त कमरा बनता है उसका, जो भी सुंदर डिजाइन से बनता है गोबर का ही, उसके अंदर उसको जमा कर देते हैं। ये पूरा काम को गोबर के कंडे बनाना बोलता है, खाली बना के छोड़ना नहीं है, एंड तक पूरा साइकिल पूरा करना है। रो रो कर कंस ने 6 महीने कंडे लिपे, उसके बाद ना वो रोते हर गोपी को बोलते करो क्या अवस्था हो गई, कुछ करो कुछ करो, तो वो सब लोग और ज्यादा ताली पिट रहे। तो उसके बाद में राधा रानी वृषभानु महाराज को लेकर छोटी सी लाली किशोरी आई, तो ये उन्होंने कहा ये राधा रानी हमारी मालकिन है। तो कंस महाराज जो आए दिन हर रोज एक एक खूंखार राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए भेज रहे हैं, इतनी मस्ती थी उसके अंदर, वो ना दंडवत प्रणाम किया उसने राधा रानी को। इतना बड़ा राक्षस इतनी छोटी सी लाली को दंडवत प्रणाम किया और गिड़गिड़ाया और रोया, बोलते हैं बचाओ मुझे बचाओ। तो वृषभानु महाराज अभी राजा है ना, वो इनको कर चुका थे, उनको पता है कि ये मेरे कर चुकाने वाले राजा है, जाना ही पड़ता है नंद महाराज के साथ, और ये मेरे बेटी के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, तो मुझे जरा सावधानी से काम करना चाहिए। कहते बेटी हमारे राजा हैं, कर दो माफ़ कर दो उसको। तो राजा रानी की उंगली उठाई, बोली याद रखना दोबारा यहाँ आओगे तो परमानेंट कन्या बनोगे, अभी आपको रिहा कर देती हूँ। तभी वो जावट में थी अपने ससुराल में, वहाँ पर किशोरी कुंड है, वहाँ पर वो स्नान करती है। तो कहती ये मेरा कुंड है, यहाँ पर स्नान करो। तो बोला नहीं, वो अपने घोड़ी को भी ले गया है, साथ में छलांग लगाई कैसा है ना, वो अपना गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना सर्वेंट, अपना कुक को सब हम लोग याद रखते हैं, उनको बेचारी सेवा करते हैं तो याद रखना पड़ता है। तो घोड़ा बेचारा वहाँ से आ लेके आया, वापस कौन लेके जाएगा, वही लेके जाएगा ना, तो घोड़ी घोड़ा बनेगा तो जल्दी लेके जाएगा। तो उसको लेके छलांग लगाई और तुरंत वो पुरुष बन गया, और पुरुष बनने के बाद में वो घोड़े को लेकर टांग पे लग कर जो भागा सीधे मथुरा तक, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। क्यों? अगर पीछे मुड़ के देखा और स्वामी ने कहा दिल बदल गया तो समझो अभी, अरे अरे वेट वेट वेट, कम बैक कम बैक, कन्या बन जा वापस, ऐसा हो गया तो इसलिए चांस लेना नहीं चाहिए। इसलिए वो जो भागा मथुरा तक दोबारा लौट के नहीं आया कभी, तो वादा किया ना मैं ना मेरा कोई आदमी यहाँ पर आएगा। अभी बताओ डरता किससे अधिक है? वो राधा रानी से। राधा रानी ने कुछ नहीं किया, वो अपना स्नान कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, ऐसा शाप दे रहे ऐसा कुछ नहीं कर रही है। उसके राज्य में प्रवेश किया, उसकी औरा में प्रवेश किया, उसके प्रभाव में प्रवेश किया, आते ही स्त्री बन गया वो। कृष्ण ने तो बहुत मुक्का मारा, किसी के मुंह में हाथ डाला, किसी को कुछ किया, किसी को गला दबाया, किसी का स्तनाग्र चूसा, क्या क्या किया मैंने। कृष्ण ने बहुत मेहनत किया, विजयी हुआ जरूर, लेकिन कृष्ण ने अपनी तरफ से मेहनत भी किया है। राधा रानी ने कुछ मेहनत भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, अपना आनंद ले रही है वो। और केवल उसके होने से, उसके क्षेत्र में प्रवेश करने से कंस जैसे दिग्विजयी सम्राट की ये अवस्था हो गई। देखो मेरे को बहुत मोह हो रहा है अभी, लेकिन गर्ग संहिता में कई अध्याय दिए हैं कंस के पराक्रम के, गर्ग मुनि ने कई अध्याय लिखे हैं, व्हाट कंसा वाज एंड व्हाट वाज हिज पावर। वो व्यक्ति को ना ऐसा क्या बना हो, क्या बना दिया उसको, देखो आप, वो राधा रानी का प्रताप है। और ये कथा भी एक जगह बताई गई है, गोवर्धन लीला होने के बाद में ब्रजवासियों की रोज चर्चा होती थी, उसमें ये कथा बताई गई है। वो बहुत गुस्सा हो गए थे नंद महाराज के ऊपर, कह रहे हमको बताया नहीं तुमने नामकरण किया उनका वगैरह। तो बोले ये अपने को बोलता है कि हमारा बिरादरी का है, राजा है, ये वो सब सब छोट बातें, इसको निकाल देंगे हम लोग। तो वृषभानु महाराज खड़े हो गए, अरे नहीं नहीं नहीं, वो समझो आप उनकी डिफिकल्टी थी उस समय, क्या आप समझा करो ना, आप बिरादरी के लोग हो तो समझो उनकी कठिनाई क्या थी। वो चाहते थे बुलाना आपका, लेकिन आपको नहीं बुला पाए नामकरण में, वो स्थिति ऐसी थी कंस के भय से। तो बोलते ये वृषभानु उसका पक्ष लेता है, उसको भी निकाल दो, तो बहुत सीरियस मामला हो गया ना। तो तीसरा एक ग्रुप खड़ा हो गया, अरे ऐसे मत बोलना, ये वृषभानु महाराज की कन्या जो है ना महाप्रतापी है, उसके महाप्रताप के वजह से तुम लोग यहाँ पर जी रहे हो आराम से, कोई राक्षस नहीं आ रहा है। तब उन्होंने ये कहानी बताई जो मैंने आपको बताई, तब सब शांत हो गए, वृषभानु बाबा नंद महाराज को गले मिले, बोले क्षमा करो, सब घर चले गए। तो ये महाप्रताप है राजा रानी का, कुछ भी किए बिना अस्तित्व ही महाप्रताप है, और उस अस्तित्व महाप्रतापी राधा रानी के धाम में आप आए हो। तो समझना जरूरी है कि हम कहाँ पर आए हैं, कोई असुविधा होगी, कष्ट होगा तो डोंट वरी, बस कृपा बटोर लो, आंचल पसार कर। हे बिदना तो ये आंचल पसारू, आई वॉन्ट योर डिवोशन। मैं कृष्ण से प्रेम करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। माया पर बहुत जन्मों तक मैं प्रेम कर चुका, अभी मैं नहीं करना चाहता। तो ऐसा ही, ये थोड़ा रुको, आप लोग रुको रुको, 10 मिनट रुको। तो बहुत सारे स्थान हैं, अभी एक साथ सब बता सकते नहीं, लेकिन गिना तो सकते हैं कम से कम। एक धोनी कुंड है जहाँ पर विश्वानु महाराज की लाखों गायों का दूध दोहन किया जाता है। एक बिहार कुंड है जिसका नाम गौरी कुंड भी है, माहेश्वरी सर भी है, जहाँ पर गौरी देवी ने, पार्वती देवी ने अपने पति देव को गोपी बनाया था, श्रृंगार किया था। एक गैवर कुंड है जहाँ पर आदरणीय अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ स्नान करती है, वहाँ पर हम जाएंगे। मान मंदिर है जहाँ पर राधा रानी रूठती है। एक पीली पोखर है जहाँ पर शाम को जाएंगे, वहाँ पर राधा रानी ने हाथ धोए थे हल्दी के, वो पीला हो गया था। एक प्रेम सरोवर है जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण के नेत्रों से जो आंसू बहे प्रेम के, उसका कुंड बना। ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। भानुकर की कथा मैंने बता दी, भानुकर पे तो कंस आए और गोपी बन गए। उसमें एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि जो गोपियाँ हर रोज प्रेम से, आंखों से प्रेम के अश्रु बहाते हुए, प्रेम से संपृक्त होकर काम करते थे, वही काम कंस कर रहा था। कोई डिफरेंट कर रहा था क्या? वही मंथन कर रहे हैं, ये भी मंथन कर रहा है, ये भी गौशाला साफ कर रहे हैं, वो भी गौशाला साफ कर रहे हैं, ये भी कंडे बना रही है, वो भी कंडे बना रही है। ऐसा नहीं कि सब काम उसको अकेले को दे दिया, खुद बैठ गए, वो भी अपना काम कर रहे हैं, इसको भी काम दे रहे हैं। लेकिन 6 महीने कम सरो ही रहा है, और 6 महीने और क्या, 6,000 साल भी वो आनंद से अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना में अंतर है। उसको तो एक झटके में प्रवेश करते ही परम सिद्धि गोपी होने का लाभ मिला था। वो तो महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतुर पदकमल और दास दास अनुदास, ये साक्षात गोपी बनने का ही भाग्य मिला उसको, ऐसा इंस्टेंटली। कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं, कुछ नहीं, तो शुड बी हैप्पी ना। लेकिन ज्ञान किधर है, नॉलेज किधर है कि क्या मिल रहा है? इसलिए हमको भी अगर नॉलेज नहीं रहेगा और कुछ कोई दे गया तो बच्चा कैसे, बच्चे के हाथ में कोहिनूर हीरा दे दिया तो वो गेंद खेलेगा उसके साथ, औरतों को दिया तो वो साबुन की तरह उसको इस्तेमाल करेंगे। नॉलेज चाहिए ना क्या मिला आपको, तब उसको कबर्ड में रखेंगे, लॉकर के अंदर। उसी प्रकार से कंस को परम सिद्धि बरसाने में आते ही इंस्टेंटली प्राप्त हो गई थी, लेकिन मति उसकी भ्रष्ट थी। इसलिए परम सिद्धि प्राप्त होने पश्चात भी रोता ही रहा, उस परम सिद्धि से मुक्त होने के लिए याचना करता रहा, और फिर मुक्त भी हो गया उससे। और फिर वो मथुरा में कंस के, कृष्ण के हाथों मर गया। जो प्रेम भक्ति मिलना चाहिए थी उसको मिल सकती थी, वो मुक्ति, मतलब वो मुक्ति प्राप्त गया, कृष्ण के हाथ से मुक्का मार के मरना पड़ा उसको। तो कृष्ण आपर अगर यहाँ गोपी भाव में अच्छे रहते तो कृष्ण आके गले लगाते उसको, है कि नहीं? सब गोपियों को गले लगाते। तो ये जरूर समझना, हमारे अंदर भी कंस बैठा हुआ है जो कृष्ण से द्वेष करता है, जो कृष्ण से विद्रोह करता है, कृष्ण से कंपीट करता है इंद्रिय भोग के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है? चेतना को बदलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भेष बदलने से कुछ नहीं होता है। डाकू भी ये धोती कुर्ता पहन सकता है, तिलक लगा सकता है, पूरा सर मुंडवा के चोटी रख सकता है लंबी एकदम 6 महीने तक, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जब तक ये तिलक हृदय पे लग नहीं लगता है ना, तब तक ये सारा चीज बेकार है। तो ये साधना करने से हृदय की शुद्धि होती है, तब जाकर ये कृपा का भी महत्व पता लगता है। हरे कृष्णा, अभी बंद कर दो तो फिर चालू करो, मैं थोड़ा और समय लूंगा आपका।